गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सविता पाठक की लिखी कहानी नीम के आंसू। पूरा गांव भन्ना रहा है। दिन के 11 बज गए हैं। सूरज टीन की तरह तप कर झुलस रहा है। पूरे गांव में एक खट्टी सी महक भरी हुई है। बब्बा को खाट पर से उतारा जा चुका है। 90 साल के बब्बा इस साल 3 बार खाट से उतारे जा चुके थे। सूखकर एकदम गठरी हो गए बब्बा। मैं ना जाने मालूम कौन सी ताप बची थी कि गंगा जल की 2 बूंद पड़ी नहीं कि आंखें खोल देते थे, और इसके साथ ही चाची का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। इनकर पेट ना है, मंडार है, अरे जब तक लील न ले हैं तब तक ना भरी। चाची करती तो क्या करती, घर की माली हालत घर की तरह ही गिर चुकी थी। किसी तरह ढाक तोप कर घर का गुजारा चल रहा था। कमाने वाला कोई नहीं और खाने वाले ढेरों मुंह। भवनौटी का चलन भी ऐसा था कि कोई औरत खेत में जाकर काम कर नहीं सकती थी। ऊपर से खेत का काम चाची को आता भी नहीं था। मुंह अंधेरे किसी का गेहूं साफ करके, किसी की दाल दल के चाची कुछ अनाज बटोर लाती थी। लेकिन पिछले 3 दिन से घर का गुजारा निछान आलू पर हो रहा था। बब्बा उर्फ जग बेटा ने सारे उम्र खेत बेचकर घर की शान शौकत बनाए रखी। मेहनत की ना तो उनको आदत थी और ना ही कोई मजबूरी। पुरानी जमींदारी की जमीन अभी भी उनका पेट पालने के लिए काफी थी। खेत में जाना और काम करना उनको मंजूर नहीं था। और अधिया यानी बटाई पर खेती लग्गी से घास काटने जैसा था। खैर, एक एक करके खेत दुकान सब पराए हो गए। और जब तक बब्बा को समझ आई, वो शरीर और मन दोनों से टूट चुके थे। 4 बेटियां और 1 बेटा। वो बेटा भी बंबई की भीड़ में हमेशा के लिए खो गया और पीछे छोड़ गया गर्भवती पत्नी यानी चाची। कैसे होगा इंतजाम, कौन करेगा क्रिया कर्म? गांव भर में तो यही चर्चा थी। कानों कान सबको बब्बा के मरने की खबर मिल चुकी थी। अपना अपना काम निपटाकर चाय नाश्ता करके ही घर से निकलना ठीक होगा, लगभग सबने यही तय कर लिया था। वैसे भी सबको अंदाज है कि इतनी जल्दी मिट्टी उठवाने का उस घर में किसी में दम नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आखिर चहकारी जरूरी है। गांव भर के लोग एक दूसरे के यहाँ बच्चों को भेजकर पता कर रहे थे कि बब्बा के यहाँ कौन कौन पहुंचा। सबके मन में एक ही डर समाया था, कहीं कोई हाथ जोड़कर उधारी न मांग ले। सामने पड़ी मिट्टी और ऐसे माहौल में कहीं कुछ देना पड़ा तो वापस करेगा कौन? बाबा के घर की सबसे छोटी बेटी घर जा जाकर सबसे उम्मीद भरे स्वर में उधारी की याचना कर रही थी। गांव भर को सूद पर उधार देने में पारंगत ठाकुर मुसाफिर सिंह को ये कर्ज देने में कोई रुचि नहीं थी। हंसी ठिठोली में भी दया क्षमा की बात का एक ही जवाब था, थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बात बात पर अपना एटीएम कार्ड थमा देने वाले जीप बलेरो मालिक भगवान शंकर मिश्रा आज घर से निकले ही नहीं और कहला भेजा कि उन्होंने गुरु मंत्र दिया है और मरनी करनी में जा नहीं सकते। पूरे गांव में सिर्फ नीम के आंसुओं की आवाज थी और नीमकौरी चारों ओर बिछती जा रही थी। बसवारी के बांस आपस में उलझकर टूट पड़ने को आतुर थे। उनके अर्राहट पूरे माहौल में एक डर खोल रही थी। इस गांव में ज्यादातर लोग आपस में पट्टीदार हैं, यानी खानदान का कोई ना कोई एक सिरा आपस में जुड़ता है, लेकिन ज्यादातर घर एक दूसरे से पीट किए खड़े थे। आपस में मुकदमा फौजदारी की पुरानी रस्म थी। कोई किसी का रास्ता बंद करने में अपनी ताकत झोंके पड़ा था, तो कोई किसी की नाली। रही बात सुख दुख की, तो ये तो राजकाज है। हर घर में कोई ना कोई बीमार और कोई ना कोई कष्ट। सच पूछो तो कहीं किसी घर में परेशानी की खबर से ज्यादातर लोगों को अपार तृप्ति मिलती थी। भगवान यहाँ दुखों पर ऐसे ही मरहम लगाता है। गांव की औरतें एक दूसरे को कोस और गरिया रही थी। इतनी देर से मिट्टी पड़ी है, अरे इनका सबे के लाज नहीं आवत है। और कुछ अपने हाथ खाली होने से सच में दुखी थी। तभी बच्चों ने आकर खबर दी कि बब्बा के घर कोई गाड़ी से आया है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबने फटाफट काम करके खत्म कर दिया और बब्बा के घर का रास्ता ले लिया। बड़की बिट्टी आई है। बब्बा से ज्यादा बड़की बिट्टी को देखने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आज से 5 साल पहले अहिराने के महेंद्र यादव के साथ भागी बड़की बिट्टी पहली दफा गांव आई थी। गांव आने की कोशिश तो उसने पहले भी की थी, लेकिन पूरा गांव उलट एक हो गया था। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई, भाग्य ने पलटा खाया। बड़की बिट्टी का आदमी पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया। उसी की जीप में बैठकर बिट्टी गांव आई थी। बिट्टी के आते ही कफन लावा ठिकड़ी सब जुट गया और बब्बा की मौत हो गई। ये भी सबको याद आ गया। गांव के लाला की अम्मा कढ़ा कढ़ा कर रोने लगी। बब्बा की शान शौकत फराग दिली के किस्से चल निकले। जोर जोर से रोने का आरोह अवरोह दहाड़े और पछाड़े पूरा गांव सक्रिय हो उठा था। 100-100 की 2 कर्रे नोट पाकर रवि बाबू कच्चे बांस चुन चुन कर कटवाने लग गए। इस भीड़ भाड़ में एक और इंसान था जिसकी किसी को भी सुध ना थी। बब्बा की पत्नी उर्फ गोमती अम्मा। दुख अपमान और गरीबी ने उन्हें इतने थपेड़े मारे कि अधेड़ होते होते उनका शरीर पूरी तरह से झूल गया था। चिंदी चिंदी बटोर कर अम्मा ने अब तक घर चलाया। कहते हैं अम्मा शहर की तरफ की थी। पूरे गांव में वो पहली महिला थी जो शौच जाने के लिए पानी का डब्बा लेकर जाया करती थी। गांव के रिवाज के मुताबिक ब्राह्मण क्षत्रिय औरतों का शौच आना जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बब्बा और उनके संबंध जग जाहिर था। खेत बिका, दुकान बिकी, लेकिन पैसा बाजार में आया और वही चुक गया। अम्मा ने पूरे गांव में पहली दुकान खोली थी और सबने नाम दिया था दौड़ा कंपनी। लेमन चूस, नल्ली, चुर्री, नमकीन और चाय की पत्ती ने अम्मा को एक वक्त में बड़ा सहारा दिया। बाजार दूर था, लेकिन भवनौटी की वो पहली औरत थी जो बाजार जाती थी, लेकिन बेटे की मौत का दुख उन पर फालिज बनकर टूट पड़ा। ठीक तो हो गई, लेकिन बाजार जाकर सौदा लाने का दम नहीं बचा। वक्त के साथ हालात और भी खराब हो गए। अब तो गांव में और भी दुकानें खुल गईं, जैसे कांकर वैसे बिया, यानी जैसा फल वैसा बीज। बड़की बिट्टी घर से भागी तो हर किसी ने ताने की झड़ी लगा दी। शादी ब्याह में अम्मा का काम किलो किलो भर उड़द पीसना हो गया, लेकिन रसोई घर में जाकर सब्जी चलाने की अनुमति नहीं मिली। बड़की बिट्टी अम्मा के गले मिली और हाथ में पार्ले बिस्किट थमा दिया। अम्मा ने फट कोठरी का दरवाजा उड़काया और बिस्किट को पानी से भिगोकर बच्चों की तरह खाने लगी। बिट्टी को गले लगाकर अपने हाथ से उतार कर प्लास्टिक का कड़ा थमाते हुए उन्होंने कहा, बिटिया ई हमार कड़ा रख लियो, बाद में दे दियो इनन। रंडी अबे हमार कड़ा तोड़ दई है। पेट में थोड़ी जान पड़ी तो आंखों से आंसू छल छला उठे और अम्मा का रुदन पूरे गांव में भर गया। नदिया का गाड़ा, जियते ही खाईस मौते ही खाईस। अभी आप सुन रहे थे सविता पाठक की लिखी कहानी नीम के आंसू। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी निधि मिश्रा।